पिछले अध्याय में आपने देखा कि रुद्र रूही को किस करता है और उसे सांत्वना देता है। अब आगे रुद्र रूही को कॉलेज भेजता है और उसकी सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड और ड्राइवर रखता है। रूही सोचती है कि रुद्र उतना बुरा नहीं है जितना परी ने बताया था। निहारिका रूही को महंगी कार में देखकर चल जाती है। दिशा शावर लेने के बाद ब्लैक अनारकली सूट पहनती है। देवांश उसे देखता है और दिशा उसकी ओर आकर्षित होती है। देवांश दिशा को उसकी सूट की डोरी बांधता है और उसे आगे से इस बात का ध्यान रखने के लिए कहता है। दिशा को देवांश का व्यवहार अजीब लगता है। नाउ नेक्स्ट चैप्टर 100। अब आगे, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि वे कुछ ज्यादा ही सोच रही है। इस बात को सोच वे अपने दिमाग से सारी बातें निकालकर बाहर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई के कॉलेज में रूही जैसे ही कॉलेज के अंदर जाती है तो उसे वहीं पर परी खड़ी हुई मिलती है। परी रूही को आता देख उसके पास जा जल्दी से पूछती है, रूही तू ठीक तो है ना? तुझे कॉलेज आने में इतना लेट क्यों हुआ? कहीं मेरे शैतान भाई ने तेरे साथ कुछ किया तो नहीं ना? परी की बात सुनकर रूही को कार में रुद्र का किस करना और उसकी सारी हरकतें याद आ जाती है। वहीं परी रूही को कहीं और खोता हुआ देखकर उसके कंधे को पकड़ते हुए बोली, रूही तू कहाँ खो गई? मुझे सच सच बता कि कहीं मेरे शैतान भाई ने तुझे कोई सजा तो नहीं दी ना? वैसे भी भाई जब तुझे लेकर गए तो मुझे थोड़े गुस्से में लग रहे थे। परी की बात सुनकर रूही हड़बड़ा जाती है, क्योंकि रुद्र ने उसके साथ किस किस तरह की हरकत की वे ये बात परी को नहीं बता सकती थी। इसलिए वे परी को देखते हुए बोली, नहीं परी, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, बस मुझे यहाँ छोड़कर चले गए। रूही की बात सुनकर परी उसे अपनी शक भरी निगाहों से देखने लगती है, लेकिन अभी वे कुछ और बोल पाती तभी वहाँ पर निहारिका आ जाती है और रूही को देख गुस्से में बोली, मुझे मालूम था कि तुम एक लालची लड़की हो, देखने में तो काफ़ी गरीब लगती हो, इसीलिए तुमने अमीर बनने के लिए एक शॉर्टकट आइडिया अपनाया और अमीर लड़कों को फंसा उनके साथ रातें रंगीन कर उनसे साथ महंगी महंगी गाड़ियों में घूमती फिरती हो। फिर थोड़ा रुक अपने चेहरे पर एक डेविल स्माइल लिए रूही को ऊपर से नीचे देखते हुए बोली, मुझे नहीं लगता कि कोई अमीर लड़का तुम्हारी तरफ नजरें उठाकर भी देखेगा, क्योंकि अमीर लड़कों का भी एक क्लास होता है, वे तुम जैसी गिरी हुई दो कोड़ी की लड़कियों को हाथ भी नहीं लगाते। तो ऐसा तो नहीं कि तुमने किसी बूढ़े के साथ अपनी लातें रंगीन कर ली? इतना बोल वे हंसने लगती है। निहारिका ये सब काफ़ी ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बोल रही थी, जिसे सुन जय, राजीव और नेहा के साथ साथ कॉलेज के उस और लड़के लड़कियाँ भी वहाँ आ गए थे और इस तमाशे को देख रहे थे। वहीं निहारिका की बात जैसे जैसे रूही के कानों में पड़ती है उसकी आंखों में खून उतर जाता है और वे बिना किसी पर ध्यान दिए एक जोरदार तमाशा निहारिका के चेहरे पर मार देती है। रूही का इतना करना ही था कि वहां पर जो लड़के लड़कियां रूही को देख बातें बना रहे थे वे बिल्कुल खामोश हो जाते हैं और वहीं निहारिका जो ये सब कहकर रूही का मजाक बनाते हुए हंस रही थी, रूही के थप्पड़ मारते ही उसका चेहरा एक तरफ छुप जाता है और वे अपने चेहरे पर अपने हाथ रख अपनी जलती हुई निगाहों से रूही को देखने लगती है। वहीं रूही निहारिका को देख अपनी आंखों में गुस्सा लिए हुए बोली, आगे से मेरे बारे में कुछ भी बोलने के पहले मेरा ये थप्पड़ याद कर लेना और तुम जैसी गंदी लड़कियों के मुंह लगने का मुझे कोई शौक नहीं है, जिसकी खुद की औकात दो कोड़ी की है, वे मुझे क्या मेरी औकात याद दिलाएगी? मुझे पता है मैं कैसी हूँ और मैं क्या करती हूँ, उसे मुझे तुम्हें बताने की कोई भी जरूरत नहीं है, पर तुम्हारी सोच को देखकर मुझे ऐसा जरूर लगता है कि तुम पैसों के लिए जरूर बूढ़े इंसान के साथ अपनी रात बिताती हो। इतना बोल वे निहारिका को एक नज़र ऊपर से लेकर नीचे तक देखती है और परी का हाथ पकड़ वहां से चली जाती है। इसी के साथ कॉलेज के लड़के लड़कियां निहारिका के बारे में बातें बनाते हुए वहां से चले जाते हैं। वहीं रूही का ये रूप देख कोई था जिसके होंठों पर छोटी सी मुस्कान आ गई थी, ये कोई और नहीं बल्कि जय था, क्योंकि उसे रूही को देख ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था कि रूही इस तरह अपना स्टैंड ले सकती है। वे रूही के इस एक्शन से काफ़ी इंप्रेस था, वे रूही से बात करना चाहता था, लेकिन तभी उसके कानों में उस इंसान की सर्द आवाज़ गूंज उठती है कि मेरी रूह से दूर रहना। इस बात को याद करते ही जय के कदम अपने आप रुक जाते हैं और वे रूही को जाते हुए देख अपने मन में बोला, स्वीटी तुम्हें देख मुझे ऐसा लगता है कि तुम जैसी दिखती हो वैसी बिल्कुल भी नहीं हो, तुम्हारे पीछे लगता है किसी बड़े आदमी का हाथ है जो तुम्हें हर वक्त प्रोटेक्ट करता है, वरना किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि वे जय को डरा सके, पर कुछ भी हो स्वीटी मैं एक दिन इस बात का पता तो लगा कर रहूंगा कि ऐसा कौन है जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है और मुझे इस तरह कराने की कोशिश की। इतना बोल वे निहारिका के पास चला जाता है, क्योंकि वे जैसी भी हो की तो उसकी फ्रेंड ही ना। वहीं निहारिका रूही जिस तरफ गई थी उस तरफ ही देखते हुए अपनी आंखों में रूही के लिए नफरत लिए बोली, रूही तुमने आज मुझे सबसे सामने थप्पड़ मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तुम देखती जाओ कि मैं कैसे तुम्हारी जिंदगी नरक बनाती हूँ, मैंने तुम्हारा इस कॉलेज में रहना मुश्किल ना कर दिया और अपनी इस बेइज्जती का बदला सूद समेत तुमसे वापस ना ले लिया तो मेरा नाम भी निहारिका नहीं। इतना बोल वे वहां से चली जाती है। वहीं निहारिका को जाता देख राजीव, नेहा और जय भी उसके पीछे चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रुद्र अपने ऑफिस के किंग साइज चेयर पर आराम से बैठा लैपटॉप पर अपनी उंगलियां तेजी से चला रहा था, तभी उसके कैबिन में अमन आता है और रुद्र को देखते हुए अपनी घबराई हुई आवाज में बोला, बॉस मुझे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बतानी है। अमन की बात सुनकर रुद्र जिसके हाथ लैपटॉप पर तेजी से चल रहे थे वे अपने आप रुक जाते हैं और वे अमन की तरफ देखते हुए अपनी कोल्ड आवाज में बोला, अगर बात इंपॉर्टेंस है तो अभी तक खड़े क्यों हूँ? बताओ क्या बात है? रुद्र की बात सुनकर अमन खुद में ही बोला, लो अब इसमें भी ये मेरा शैतान बॉस मेरी ही गलती निकाल रहा है। इतना बोल वे रुद्र की तरफ देखते हुए थोड़ा सीरियस होते हुए बोला, बॉस अमेरिका का माफिया एनके इंडिया आ रहा है। आपको तो पता ही है ना बॉस कि आपकी और उसकी दुश्मनी कितनी पुरानी है। अब वे यहाँ आ रहा है तो कुछ बड़ा प्लान करके ही आ रहा होगा। हमें पहले से ही उसके हर एक्शन के लिए तैयार रहना होगा। अमन की बात सुनकर रुद्र अपने चेहरे पर खतरनाक स्माइल लिए बोला,
अगर वे आ रहा है तो आने दो, उसे जो कुछ भी प्लान करना है करने दो, क्योंकि वे कुछ भी कर ले, वे रुद्र सिंघानिया का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हमेशा की तरह वे फिर से हारकर यहाँ से वापस चला जाएगा, क्योंकि यहाँ का किंग सिर्फ और सिर्फ रुद्र सिंघानिया ही है, और उसकी जगह कोई ले पाए आज तक वे इंसान पैदा नहीं हुआ। इतना बोल उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है।